जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupada Paramhansa Parivrajakacharya Stotra Sata. His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jaya Shri Shri Gaur Nitai Ki Jaya Nitai Gaur Premanande Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jaya Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jaya Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jaya Shri Shri Guru Gauranga Ki Jaya Hare Krishna. कल शाम को हम भगवद गीता के 12वें अध्याय से पहले श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे. हिंदी में बोलेंगे ना, हिंदी. तो आज दूसरे श्लोक से आगे कथा बढ़ाते हैं. तो भगवद गीता की प्रतियां आप सब एक एक करके ले सकते हैं. और दीजिए इधर, इधर भी आगे। यहाँ दीजिए सामने। इधर भी एक किताब, मोबाइल पे है, ठीक है कोई। ओम नमो भगवते। हाँ, सबका मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल की बात आई तो। जिसका मोबाइल क्लास में बजता है वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मोबाइल पुराण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसे बताया गया है। तो आपके मोबाइल को चेक कीजिए, निकालिए बाहर, सब निकालिए, बीच में बजना नहीं चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय, भक्ति योग, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः मताः। श्री भगवान उवाच, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः मताः। श्री भगवान उवाच, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मई मुझ में आवेश्य स्थिर करके मनह मन को ये जो माम मुझको नित्य सदा युक्ताह लगे हुए उपासते पूजा करते हैं श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक परया दिव्य उपेताः प्रदत्त ते वे मे मेरे द्वारा युक्ततमाः योग में परम सिद्ध मताः माने जाते हैं। तो जहां श्लोक में विसर्ग होता है, विसर्ग मतलब समझे आप, विसर्ग क्या होता है, आह जो दो बिंदु होते हैं उसका उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं युक्ततमा मताः, ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, क्षमा कीजिए, मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गमाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बारहवें अध्याय के पहले श्लोक में जैसा कि हम कल शाम को चर्चा कर रहे थे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न क्या था? योगवित तमाह कौन है? योग का ज्ञान किस व्यक्ति को सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा योग मार्ग में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति कौन है? क्या ऐसा व्यक्ति है जो एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते, जो आपका भक्त है, जो सतत आपकी सेवा में आपकी उपासना में लगा रहता है, क्या वो सबसे श्रेष्ठ है? या तो फिर ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, कि वो अव्यक्त निराकार जो परम सत्य है, ब्रह्म ज्योति है, क्या वो श्रेष्ठ है? क्या नहीं चल रहा है? तो जो निराकार ब्रह्म भगवान के निराकार स्वरूप को पूछते हैं, क्या ये श्रेष्ठ है? दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? दो प्रकार के योगी होते हैं, तो दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। अब अर्जुन अपने जगह में अच्छी तरह से स्थित है। अर्जुन परम भक्त है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है। अब रहने दो, एक जगह बैठ जाओ, बीच में उठना करना डिस्टर्ब हो जाता है ना, यू सिट इन वन प्लेस। तो अर्जुन तो परम भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, तो उनको निराकार से क्या लेना देना है? क्योंकि भगवान की निराकार ज्योति में लीन होना, ऐसा कौन लोग करते हैं जिनको अपना व्यक्तित्व, अपना इंडिविजुअलिटी नष्ट करना होता है? इसलिए वैष्णव इसे आध्यात्मिक आत्महत्या मानते हैं, क्योंकि हम हमारे व्यक्तित्व को ही हम समाप्त करना चाहते हैं, आत्मा को निराकार ब्रह्म ज्योति में, प्रकाश में लीन करना चाहते हैं। तो ऐसी हमारी भावना होती है यदि हम निराकार में लीन होना चाहते हैं तो। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं, इनको कभी भी ऐसे करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की नित्य सेवा करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के सानिध्य को चाहते हैं, भगवान के भक्तों का भी संग चाहते हैं। और बिना सेवा के, बिना प्रेम के संग का कोई मतलब नहीं होता। यदि हम थोड़े लोगों के बीच में हैं और आपस में हम हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमारे बीच में मतभेद होते रहते हैं, हमारे बीच में द्वेष है, घृणा है, तो ऐसे संग का क्या मतलब? हम सोचेंगे यहाँ से हमें दूर चले जाना चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो संग हमें तब रसमय लगता है, तब अच्छा लगता है, जबकि जिनके संग में हम रह रहे हैं उनमें संबंध अच्छे हो, प्रेम के हो, सभी लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हो, मिलजुल के सभी भगवान की सेवा कर रहे हो, ऐसा संग बहुत अच्छा रहता है। तो जीवन का ध्येय है भगवान की सेवा करना, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से। इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, और यही हमारा सच्चा स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिं विष्णुम्, कि हम सबका जो सच्चा हित है, स्वार्थ है, वो क्या है? कि हम भगवान विष्णु की सेवा करें। ये स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व और अर्थ। स्व मतलब मैं और अर्थ मतलब लाभ या हित। तो मेरा हित, मेरा सच्चा स्वार्थ किस में है? ये उत्तर इस पर निर्भर होता है कि स्व शब्द से मैं क्या समझता हूं। यदि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं तो फिर मेरे लिए स्वार्थ शरीर के आधार पर होगा। यदि मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो कि अमर है, तो फिर मैं आत्मा के स्तर पे मेरा हित चाहूंगा। और आत्मा के स्तर पे अपना हित चाहना, यही हमारा वास्तविक हित है। इसलिए ये सच्चा स्वार्थ है। तो स्वार्थी होना गलत नहीं है, इतना है कि स्व का सही अर्थ होना चाहिए। यदि स्व को हम शरीर समझ बैठे तो वैसा स्वार्थ अच्छा नहीं है, लेकिन स्व को हम आत्मा जान लेंगे तो ऐसा स्वार्थ हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा सच्चा हित किस में है? प्रहलाद कहते हैं भगवान विष्णु की भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से। तो भक्त भगवान के हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में जो आनंद मिलता है वो इतना अधिक है कि निराकार ब्रह्म में लीन होने से ये बहुत अधिक है। यदि निराकार ब्रह्म में लीन होने से एक बूंद आनंद हमें मिले तो भगवान की प्रेममयी सेवा करने में हमें समुद्र के समान आनंद मिलेगा। तो दोनों में हम कुछ तुलना ही नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ में ये हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, दास है। तो हमारे स्वरूप को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसको छोड़कर जब हम निराकार ब्रह्म में लीन होकर भगवान बनने की इच्छा रखते हैं तो ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल अवस्था है। इसमें सच्चा आनंद जीव को नहीं आ सकता। और वैसे तो जीव अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक हरे रंग का तोता यदि एक हरे रंग के वृक्ष में प्रवेश करता है तो हमें लगता है कि तोता जो है वो पूरी तरह से वृक्ष में मिल गया। हाँ, मिल तो गया, परंतु उसका व्यक्तित्व खत्म नहीं होता है। वृक्ष के अंदर भी तोता रहता है। तो उसी तरह से जीव भी जब निराकार ब्रह्म में जाके रहता है उसका व्यक्तित्व खत्म नहीं होता, परंतु उसकी निराकार ब्रह्म में जाने की इच्छा ऐसी होती है, उसका उद्देश्य ऐसे होता है कि मैं वहां जाके निराकार ब्रह्म में अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर दूं। हनुमान का नाम तो हम सब ने सुना है, श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। तो हनुमान जी श्री राम के परम सेवक है। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान का दास कैसे होना चाहिए, ये हनुमान के द्वारा हम सीख सकते हैं। तो हनुमान ने एक बार कहा, भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामी न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, जिस मोक्ष के द्वारा मैं उस निराकार ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊंगा, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे मोक्ष के द्वारा मैं इस भव बंधन से, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊंगा, फिर भी मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे निराकार में लीन होने के बाद एक हमारी जो धारणा है वो खत्म हो जाएगी। कौन सी धारणा है? भवान प्रभुर अहम दास, कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूं। ये जो एक भावना है ये समाप्त हो जाएगी। तो जब मैं आपका दास नहीं रहूंगा और आप मेरे स्वामी नहीं रहेंगे तो फिर क्या लाभ है? तो जो जीव है वो सदा भगवान का दास है, और जीव को सच्चा आनंद चाहिए तो उसे अपने आप को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, और यही हमारी पहचान है। जब हनुमान की बात कर रहे हैं तो चलिए हनुमान के बारे में एक छोटा सा प्रसंग बताएं। जब हनुमान जी ने लंका में जाके तहस नहस कर दिया था, सारे लंका को जला डाला था, तो उस समय इंद्रजीत आदि सब लड़ाई करने आए हनुमान के साथ में। अंततः हनुमान स्वेच्छा से पकड़े गए। वैसे इंद्रजीत की भी क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान को पकड़ सके, परंतु हनुमान को देखना था कि रावण ये कौन है जिसने कि सीता का अपहरण किया है, और वो एक संदेश देना चाहते थे रावण को और रावण के साथियों को। तो फिर वो गए, और साथ साथ एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि मेघनाद ने या इंद्रजीत ने ब्रह्म पाश का उपयोग किया था, और ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो भी जिसके विरुद्ध भी इंद्रजीत इस पाश को, इस रस्सी को प्रयोग करेगा वो बंध जाएगा। तो हनुमान जानते थे कि ब्रह्मा जी ये सृष्टि करता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, आचार्य हैं, तो उनके शब्दों का मान रखना चाहिए। तो जब उन्होंने वरदान दिया है इंद्रजीत को तो उनके जो शब्द हैं वो गलत नहीं निकलने चाहिए, झूठे नहीं होने चाहिए। तो इंद्रजीत ने जब ये पाश फेंक दिया तो हनुमान जी स्वयं उसके पकड़ में आ गए अपनी इच्छा से, ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए। तो जब रावण के सामने आए तो रावण ने पूछा बड़े घमंड से, कौन हो तुम? तो उस समय हनुमान ने यह नहीं कहा कि मेरा नाम हनुमान है, मैं इतना शक्तिशाली हूं और इतना सब, नहीं कहा। हनुमान ने क्या कहा, किसी को याद है? हाँ, किसने कहा? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ आगे। हाँ, रामस्या क्लिष्ट कर्मण। उन्होंने कहा दासोहम, मैं सेवक हूं। दासोहम किन का दास हूं? कौशलेंद्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः, मैं कौशल प्रांत के जो राज के जो राजा हैं जिनका नाम है राम, उनका मैं दास हूं। और राम कौन है? अक्लिष्ट कर्मणः, जो अपने कार्यों में कभी भी थकते नहीं हैं। ऐसे श्री राम जो कि कौशल के राजा हैं, मैं इनका सेवक हूं। तो हनुमान जी अपने आप का परिचय जब देते हैं तो भगवान का दास कह के सेवक करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी को जब किसी ने प्रस्ताव रखा कि भाई तुम मोक्ष स्वीकार कर लो, भगवान ने भी दिया हो कहा होगा तुम्हें मोक्ष चाहिए हनुमान? नहीं नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। यह सच्चा भक्त होता है, उसको मोक्ष, उसे मोक्ष की भी कामना नहीं रहती है। तो इस तरह भगवान के भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान के सेवा में रत रहते हैं। सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। तो निराकार ज्योति में लीन होने से फिर क्या हो सकता है? भगवान की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हनुमान कहते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे आराध्य देव हैं, ये धारणा नहीं रहेगी। धारणा क्या रहेगी? मैं ही भगवान हूं, मैं ही परम सत्य हूं। अहम ब्रह्मास्मि। वैसे अहम ब्रह्मास्मि सही है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आत्मा हूं, मैं चिन्मय हूं, मैं आत्मा हूं परंतु मैं परमात्मा नहीं हूं। नहीं तो ये श्लोक कैसे हुआ होता, ये सूत्र कैसे हुआ होता, अहम परब्रह्मास्मि। अहम परब्रह्मास्मि नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि है। तो भक्त हमेशा ये चाहता है कि वो भगवान की सेवा करते रहे, इसलिए निराकार ज्योति की उपासना करके निराकार ज्योति में लीन होना, इससे भगवान के भक्तों को पसंद नहीं है। जो आनंद सेवा में मिलता है वो ऐसे ही निराकार में लीन होने से नहीं मिलता है। इसलिए यहां पर जब अर्जुन ऐसे प्रश्न करते हैं कि ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन तो पक्का भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी वो जानना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं हम सब के लिए। और दूसरे श्लोक में ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण आदेश दे देते हैं, उनका मत सुना देते हैं। क्या कहते हैं भगवान, मई आवेश मनो ये माम, मई आवेश, मेरे मुझ में उसके मन को मुझ में स्थिर करके, मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो मेरी उपासना में नित्य भावना से रत रहता है, श्रद्धया परयोपेताः, जो बड़े श्रद्धा से दिव्य दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर जो सदैव मेरी उपासना करता है, मेरी सेवा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तेमे युक्त तमामताः, वो योग में सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के साकार रूप के ऊपर अपना ध्यान करके, साकार रूप को ही स्रोत मान के, मूल भगवान का रूप मान के उनकी सेवा करने में बड़ा आनंद है, और ये सबसे ऊंचा सत्य है। निराकार ये क्या है, भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ये निराकार ब्रह्म जो है ये मेरे दिव्य शरीर का तेज है, प्रकाश है। तो इसलिए भगवान के तेज की उपासना करने के बजाय क्यों ना प्रत्यक्ष भगवान के सुंदर रूप की सेवा की जाए, भगवान के सुंदर रूप के ऊपर ध्यान किया जाए। तेज के ऊपर ध्यान क्यों करना चाहिए, इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वो इस तेज से प्रभावित नहीं होते हैं। ईशोपनिषद में एक भक्त ने कहा है, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्तं पूषमपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, ये जो आपका निराकार ब्रह्म तेज है इतना चमकदार है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए इस निराकार तेज के पर्दे को आप हटा दीजिए ताकि मैं आपका सुंदर मुखारविंद, आपका सुंदर चेहरा मैं देख सकूं। भगवान का सुंदर मुख देखना चाहते हैं भगवान के भक्त। भगवान का रूप बहुत सुंदर होता है, सौंदर्य की परिपूर्णता, परफेक्शन ऑफ ब्यूटी है भगवान का रूप। तो भगवान के भक्तों को भगवान के सौंदर्य से आसक्ति होती है, केवल किसी तेज से, किसी आकार से नहीं। तो एक भक्त है, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे ये तेज से, प्रकाश से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि मुझे आपका सौंदर्य देखना है, इसलिए इस तेज को निकाल दीजिए। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का उत्तर देते हुए सीधे स्पष्ट रूप से तुरंत जवाब देते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करता है भगवान के साकार रूप को, और ऐसे ध्यान में केंद्रित करके श्रद्धा से और भक्ति से उनकी सेवा करता है, वो सबसे ऊंचा योगी माना जाता है। जब हम योगी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में कभी एक चित्र आता है। जब मैं शब्द कहता हूं योगी, तो आपके मन में कैसा चित्र आया, वर्णन कीजिए। किस व्यक्ति का को के बारे में सोच रहे हैं, दिखने में कैसा है वो व्यक्ति? बाल बड़े हैं, जटा है, और वो हिमालय में ध्यान में ऐसे बैठा है या सर पे खड़ा हुआ है। तो जब योगी शब्द का प्रयोग करते हैं तो मन में चित्र ऐसे व्यक्ति का आता है। परंतु योगी केवल ऐसे नहीं होते हैं। योगी वो होता है जो अपना संबंध भगवान से जोड़ना चाहता है, क्योंकि योग शब्द युज से आता है। युज मतलब संबंध जोड़ना। तो जब कोई व्यक्ति भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे योगी कहते हैं। तो अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने के कई रास्ते हैं और इन रास्तों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि। परंतु इनमें से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हमारा प्रेम से संबंध भगवान के साथ स्थापित हो जाता है। अन्य जितने भी योग पद्धतियां हैं वो हमको भक्ति योग के परिपूर्णता तक यदि पहुंचाएं तब वो सफल होते हैं। तो खैर, भगवान यहां साफ बताते हैं कि जो भक्ति योगी होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और भक्ति योगी कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि हिमालय में बैठ के जटाधारी कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है और वो ही योगी है। नहीं, एक छोटा बच्चा भी योगी हो सकता है। जैसे अहन बैठे, ये भी योगी है, क्यों, भगवान की सेवा करता है ना, भी योगी है। कोई महिला है, विद्यार्थी है, छात्रा है, योगी है। हाँ, घमंड नहीं होना, हम योगी हैं, चलो अभी हम, लेकिन योगी है। कोई बहुत वृद्धा है, वृद्ध महिला है, गृहिणी है, यदि वो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा कर रही हो तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। हिमालय में बैठ के कड़ी तपस्या करके शीर्षासन में खड़े होके गंगा के ठंडे जल में स्नान करके ठंडी में ऐसी तपस्या करने वालों से भी श्रेष्ठ एक गृहिणी है या एक छात्र है या एक बच्चा है जो सतत भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार भगवद गीता में इसी बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण करते रहते हैं। तो योग की परिपूर्णता किस में है? वेर इन लाइज द परफेक्शन ऑफ योगा, कि हम अपने ध्यान को, अपने चित्त को एकाग्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य साकार रूप में केंद्रित करें और बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से उनकी सेवा करें। सो द परफेक्शन ऑफ योगा लाइज इन कॉन्सेंट्रेटिंग आवर माइंड विथ फिक्स्ड अटेंशन ऑन द ब्यूटिफुल पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा and serving him with faith and devotion. This is the highest yoga. बहुत सरल परिभाषा है। दुर्भाग्यवश समाज में लोगों को पता नहीं है। जब योग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो तुरंत वो हठ योग की बात सोचते हैं, भुजंगासन, पद्मासन, ये आसन, वो आसन, प्राणायाम, इसकी बात सोचते हैं। इसे हठ योग कहते हैं, जो अष्टांग योग का एक भाग है। और आजकल दुनिया में योग शब्द बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। सभी लोग, ऐसे कोई नहीं है किसी भी देश में जिसने योग शब्द नहीं सुना होगा। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, विभिन्न देशों में योग के जो कक्षाएं हैं, क्लास हैं, वो चलते रहते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। चीन में भी बहुत लोकप्रिय है, भारत से भी ज्यादा लोकप्रिय चीन में है योग अभ्यास। वहां चीन में भी संस्कृत योग आदि पढ़ने के लिए इतने विद्यार्थी हैं जो भारत में भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भारत में हम प्रगति करना चाहते हैं ना। भारत में हम क्या करना चाहते हैं? जर्मन सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं। भाषा सीखने में कोई समस्या नहीं, परंतु संस्कृत नहीं सीखना है, भारत की भाषाएं नहीं सीखनी है। जर्मन, फ्रेंच, जापानी सब कुछ सीखना है, और कोई भक्ति वगैरह नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये भारत का है। तो ये हमारी आधुनिक प्रगति है। तो योग वो नहीं है जो जनसाधारण सोचती है, योग वो है जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो यहां कितनी सरल परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन भगवान ने दिया हुआ है। और फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कृष्ण भावना में रहता है उसके लिए कोई भी कार्य भौतिक नहीं होता, क्योंकि सब कुछ वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा है। दूसरे शब्दों में, जब हमारे सारे कार्य हम केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो हमारा हर एक कार्य दिव्य बन जाता है। इसमें कोई भौतिक परिणाम नहीं होता है, और इसलिए ये सब भक्ति ही माना जाता है, भक्ति योग होता है। ये ऐसे नहीं है कि हम दिन भर काम करते रहें और हम कर्म योगी बन गए। ऐसे भारत में धारणा है ना लोगों की। एक बार हम व्यक्ति से मिले थे, और आप भी ऐसे लोगों को मिले होंगे जो कहते हैं मैं दिन रात मेहनत करता हूं और मैं कर्मयोगी हूं। तो क्यों कर्मयोगी है? क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है। नहीं, ये कर्मयोगी की परिभाषा नहीं है। केवल मेहनत करना, दिन रात काम करना, ये कर्मयोगी नहीं होता। कर्मयोगी कौन होता है? जो कर्म करता है, परंतु सर्वप्रथम कर्मों के फलों से निरासक्त होता है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, ये लाइन सभी लोग जानते हैं भारत में, परंतु इसके बाद कौन सा लाइन है वो भूल जाते हैं। मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार अवश्य हम में है, परंतु कर्मों के फल को भोगने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मां फलेषु कदाचन, कभी भी फल का भोग करने के अधिकारी हम नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भूर, अपने आप को अपने कर्मों के फलों के श्रोता मत समझो कि मेरे वजह से ये कर्म हुआ, इसका फल है, मैंने किया है। माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म नहीं करने से भी आसक्त नहीं होना। तो फिर कर्म हमें करने चाहिए, कर्मों के फल से निरासक्त होना चाहिए, अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, अपने कर्मों को नहीं करने से आसक्त नहीं होना चाहिए। ये सब कर्मयोग है। तो कर्मयोग में सबसे पहले चाहिए कि कर्मों के फलों से हम आसक्त न रहें। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा इज दैट वी हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस, फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस। तो ये कर्मयोग की प्रथम श्रेणी है। तो हमारे कर्मों के फल के भोक्ता हम नहीं हैं, I am not the enjoyer of the fruits of my action. इतना हम समझ सकते हैं कर्म योग के प्रथम श्रेणी में, परंतु वो फल, कर्मों के फल किसके हैं, कौन उसका सही भोक्ता है, वो नहीं मालूम। परंतु पहले श्रेणी से जब कर्मयोगी दूसरे श्रेणी में जाता है, तब वो समझ लेता है कि मेरे कर्मों के फल के सही भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। When the karma yogi moves from the first level to the second level, he understands that it is not only that I am not the enjoyer of the fruits of my actions, and Lord Krishna is the real enjoyer of the fruits of my actions. Jaisa ki Bhagavan Shri Krishna Gita mein kehte hain, yat karoshi yad ashnasi yad juhosi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. तुम जो भी करते हो हे अर्जुन, यत करोषि, तुम जो भी कुछ यज्ञ आदि करते हो, यज्ञोषि, जो भी दान देते हो, यद ददासि, जो भी खाते हो, यद अश्नासि, मुझे अर्पण करके करो। तो ये कर्मयोग की दूसरी श्रेणी है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं तो भोक्ता मेरे कर्मों के फलों का नहीं हूं, तो कर्मों के फल के भोक्ता है श्री कृष्ण। तो ये है कर्मयोग का दूसरा स्तर। इसके बाद जब व्यक्ति की चेतना और विकसित होती है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में आकर्षण और प्रेम उत्पन्न होने लगता है, तब वो क्या करता है, वो कहता है कि हे कृष्ण, अभी मैं आपके शरण में हूं, मैं अभी आपका हूं। आपका हूं मतलब कि मैं आपके शरण में आके आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आके ऐसे कोई व्यक्ति कहता है, तव अस्मि, मैं आपका हूं हे प्रभु, तभी उसकी भक्ति वास्तव में शुरू हो जाती है। हम भगवान के सामने आके कहें, प्रभु तव अस्मि, मैं आपका हूं, लेकिन वो भक्ति यदि सच्ची होनी है तो हमारे मन में ब्रैकेट्स में हमें ये नहीं कहना चाहिए, मैं आपका हूं लेकिन मेरा पैसा आपका नहीं है, मेरी गाड़ी आपकी नहीं, मैं हूं आपका लेकिन मेरा पैसा मेरा है, मेरी गाड़ी मेरी है, मेरा परिवार मेरा है, नहीं, तव अस्मि, मैं आपका हूं। इसलिए अब जो भी कार्य वो व्यक्ति करता है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, प्रेम से करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके कार्य ही भक्ति है। आप समझ रहे हैं इस अंतर को, कर्म योग के दूसरे स्तर में और भक्ति योग में अंतर क्या है? What is the difference between karma yoga level 2 and bhakti yoga? In karma yoga level 2, you perform the actions that you want to perform and offer the fruits to Krishna. हम जो कार्य करना चाहते हैं अपने मनमाने ढंग से हम कार्य करते हैं और कर्मों के फल भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? In bhakti yoga, we perform actions only for the pleasure of Krishna, according to what Krishna wants, not according to what we want. Therefore, every action itself is an offering to Krishna. There is no need to offer the fruits of the actions to Krishna. क्योंकि हमारे हरे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, इसलिए हरे कार्य भक्ति है। उस कार्य के फल को भगवान को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. सो एवरी लिटिल एक्शन इज फॉर कृष्णास प्लेजर. इसलिए प्रभुपाद यहां पे बड़े विस्तार में कहते हैं अपने तात्पर्य में कि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो सदैव श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ रहता है. और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि कभी वो जप करता है तो कभी कीर्तन करता है, कभी कुछ प्रवचन सुनता है, कभी भगवद गीता या श्रीमद् भागवत पढ़ता है, कभी भगवान के लिए भोग या प्रसाद बनाता है, कभी बाजार में जाता है कुछ भगवान के लिए खरीदने के लिए, और कभी वो भगवान के मंदिर का मार्जन करता है, कभी भगवान के बर्तनों को धोता है. वो जो भी कुछ करता है एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गमाता है. अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट वेस्ट इवन अ सेकेंड विदाउट सर्विंग कृष्णा. ही इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन एक्ट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. वो सदैव भगवान की सेवा में लगा हुआ रहता है क्योंकि वो जानता है कि समय बहुत मूल्यवान है, खास करके मनुष्य जीवन में, और हर एक क्षण हमें भगवान की सेवा करना चाहिए. इधर उधर हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए. इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं रहता है. सो अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड नेवर स्टेज इवन वन मोमेंट विदाउट सर्विंग कृष्णा. सच एक्शन इज इन फुल समाधि. प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो कार्य हैं वो पूर्ण समाधि है. जो अष्टांग योगी होते हैं उनके लिए समाधि की परिभाषा अलग होती है. समाधि मतलब वो ध्यान में बैठते हैं और फिर ध्यान में एकाग्र चित से किसी का स्मरण करते हैं, तो इसको समाधि कहते हैं. परंतु शुद्ध भक्त के लिए समाधि क्या है? भगवान की सेवा में हर एक क्षण लगाना, कोई भी एक क्षण भी गंवाना नहीं. सो फॉर अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड व्हाट इज समाधि? समाधि मीन्स टू नॉट लेट अ सिंगल मोमेंट गो वेस्ट एंड टू एंगेज एवरी मोमेंट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. So for a pure devotee, even washing vessels, sweeping the floor in the temple is samadhi. एक शुद्ध भक्त के लिए मंदिर का मार्जन करना, मंदिर के में भगवान के बर्तन धोना, ये सब समाधि है. बहुत आवश्यक है इस समझ को हमारे चित्त में लाना. To make this understanding is very important. नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नई दखिलमित्युपदेश सारम. रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है कि सबसे अच्छा उपदेश, उपदेश सारम, वो क्या है? निखिलम कालम, हमारा समस्त समय. The essence of the best instructions for us as human beings is to utilize 24 hours a day for what? Tan means for Krishna. Naam roopa charitadi sukirtanano smrityo. To constantly chant about, to think about, to hear about the holy name, the pastimes, the devotees, the form, the qualities of Krishna. Tan nama rupa charitadi sukirtanano smrityo kramena rasana manasi niyojya. To engage the tongue in chanting Krishna's name, in tasting Krishna's prasadam, and to put oneself as a follower of a resident of Vrindavan. Tishthan vraje, to stay in Vrindavan. Tad anuragi jananugami, and to become the follower of the great devotees of Vrindavan. Now you may say, well, I have so many duties to perform in Mangalore, And now in the temple they are asking us, you go to Vrindavan, Tishthan Braje, and in the house and everybody will complain, you stop going to the temple. They are asking you to go to Vrindavan and leave Mangalore. तो घर में यदि कोई ऐसे पूछे कि वृंदावन में रहना है ऐसे आपको बताया जाता है तो अच्छी खबर आपको देना चाहते हैं। वो कौन सी अच्छी खबर है कि मैंगलोर में रह के भी आप वृंदावन में रह सकते हैं। कैसे? यदि मैंगलोर में मंगलुरु में आप सतत भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं, जप करना, कीर्तन करना, पढ़ना और जो भी आप कर रहे हो, आप गृहिणी हैं, घर के कार्य कर रहे हैं, बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, आप छात्र या छात्रा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप ब्रह्मचारी हैं या आप गृहस्थ कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि आप समझें कि आप ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं और हमारी भावना केवल यही है, तव अस्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं, इसलिए आपकी सेवा ही मैं करना चाहता हूं, तब हमारे जीवन की सफलता हो जाएगी। इसलिए यह रह के भी आप वृंदावन में ही रहेंगे और हमारे मन में हमें वृंदावन के निवासियों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे माता यशोदा, नंद बाबा, भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल जैसे कि मधुमंगल और श्रीदामा, सुदामा इत्यादि, और श्री कृष्ण के गोपियां जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता देवी, विशाखा देवी इत्यादि, ऐसे ब्रजवासियों का हम चिंतन कर सकते हैं। ब्रजवासियों की विशेषता ये है कि वो अन्य कृष्ण भक्तों से भी श्रेष्ठ है। द पोजिशन ऑफ द डिवोटीज ऑफ कृष्णा इन वृंदावन इज वेरी स्पेशल। दे आर ग्रेटर देन इवन ऑल द अदर ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो वृंदावन के जो भक्त हैं वो अन्य भक्तों से श्रेष्ठ क्यों हैं? अभी इसको ध्यान से सुनिए। जो अन्य भक्त होते हैं, भले वो शुद्ध भक्त भी क्यों ना हो, उनका सूत्र क्या होता है? What is the formula of the devotees, the pure devotees who live outside of Vrindavan? Tava asmi, my dear Lord, I am yours. ये भी शुद्ध भक्ति है अवश्य, परंतु वृंदावन के भक्तों का सूत्र, उनका फॉर्मूला क्या है? कृष्णा यू आर माइन, कृष्णा आप मेरे हो, ममत्व। ममत्व मतलब मैंपन की, कि आप मेरे संपत्ति हो। तो वृंदावन की विशेषता यह है कि वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण को अपनी संपत्ति मानते हैं। सो दे कंसिडर themselves टू बी equal to or superior to Krishna out of their love for him. That is why they are considered so great. क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना नहीं मानते हैं, अपने आप को श्री कृष्ण से बराबर मानते हैं और कभी कभी श्रेष्ठ भी मानते हैं। जैसे माता यशोदा और नंद महाराज, वो अपने आप को प्रेम में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कृष्ण के माता पिता हैं और माता पिता तो बच्चों से श्रेष्ठ होते हैं और माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों का देखभाल करना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी रक्षा करना। तो माता यशोदा और नंद महाराज हमेशा चिंता में रहते थे कि कृष्ण की रक्षा कैसे की जाए, कितने सारे असुर आ रहे हैं, श्री कृष्ण को अच्छी तरह से खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए, वो बीमार न पड़ जाए। कभी कभी कृष्ण को डांटते भी थे, कृष्ण इधर आओ, अभी भोजन का समय हो गया है, तुम कहाँ इधर उधर एक लावारिस बच्चे की तरह घूम रहे हो, खेल रहे हो, भोजन का समय हुआ तुरंत घर में आ जाओ। तो माता यशोदा ऐसे भगवान को डांटती थी। अब दूसरे किसी भी तरह के भक्त भगवान को डांटेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। What to speak of in other religions, even within the path of bhakti, in many places you cannot scold the Lord. आप नरसिंह देव के सामने जाके उनको डांट सकते हैं? Can you go in front of नरसिंह देव and scold him? लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को जाके डांटते हैं माता यशोदा, और भगवान कृष्ण घबरा जाते हैं। अरे रे रे, माता यशोदा डांट रही है, भागो भागो भागो। और उनके मित्र फिर उनको और डांटते हैं, खबरदार कृष्ण, जाना नहीं, अभी खेल हमारा खत्म नहीं हुआ। माँ के डर से भाग के जाओगे तो अगली बार हम तुम्हें खेल में नहीं लेंगे। तो कृष्ण डर जाते, अरे बाबा क्या करेंगे अभी, इधर से माँ डांट रही है, इधर से मेरे मित्र डांट रहे हैं। तो कृष्ण डर जाते हैं, अभी क्या करना चाहिए। ये है वृंदावन की लीला, ममत्व। कृष्ण मेरा है इसलिए मैं उसको डांट सकता हूं, लेकिन ये मेरापन जो है, ये ममत्व जो है, ये सबसे ऊंचे शुद्ध भक्ति के स्तर पे ही प्राप्त हो जाता है। इसमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, ऐश्वर्य भावना, ये माधुर्य भाव है। ब्रजवासियों को ये धारणा नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है, और उनको पता भी चलता है कि श्री कृष्ण भगवान है तो उनको कोई परवाह नहीं इस बात की। माता यशोदा नंद महाराज फिर भी कृष्ण को डांटेंगे ही, भगवान हो सकते हो, जो भी हो सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे हो और मेरा कर्तव्य है तुमको डांटना, तुमको ठीक करना। हर जगह जाके चोरी करते हो, चोरी करना अच्छा है क्या? नहीं है। हर जगह जाके झूठ बोलते हो, वैसे कृष्ण ने झूठ नहीं बोला। कृष्ण झूठ बोलते हैं कभी? जब माखन चोरी करते हुए पकड़े गए और उनको माता यशोदा ने पूछा, गोपियों ने लाया कृष्ण को, देखो तुम्हारा लाडला बच्चा माखन चोरी करता है, तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया, यहां से माखन गिर रहा है। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं माखन खायो। लेकिन कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वास्तव में उन्होंने क्या कहा? मैंने ही माखन खाया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी सुंदर लीलाएं ब्रजवासियों के साथ करते रहते हैं, और ऐसे निकट के प्रेम के आदान प्रदान जो भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में होते हैं वृंदावन में, और कहीं नहीं पाए जाते वृंदावन के बाहर। तो इसलिए जो ब्रजवासी होते हैं उनका हर एक कार्य भक्ति, प्रेमा भक्ति के स्तर का होता है। जो गोपियां वहां पे रहती हैं वो मंथन करती हैं दही का, दूध का, तो किस लिए? तो वो भी कार्य भक्ति हो जाता है। गाय का दोहन करती हैं, अपने घर को साफ करती हैं, तो गोपियों के लिए हर एक कार्य शुद्ध भक्ति है। तो ऐसे ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चल के हमारे छोटे छोटे से कार्य, बड़े बड़े कार्य भी, वो भी भक्ति हो सकते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्व को, उनके सुंदर रूप को, उनके सुंदर गुणों को आदि ध्यान में रखते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रेम से यदि हम कार्य करेंगे तो हम भी भक्ति के स्तर में स्थित होंगे, हमारा हर एक कार्य शुद्ध भक्ति का हो जाएगा और हम भी सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाएंगे, जैसा कि श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है? हाँ, अच्छा, आपको मैं थोड़े प्रश्न पहले करता हूं। तो भक्ति की दो भावनाएं कौन सी हैं? पहला कौन सा है शुद्ध भक्ति के? पहला संस्कृत में क्या है? तव अस्मि। तव अस्मि का मतलब क्या है? आई एम योर्स भगवान को कहेंगे, मैं आपका हूं, और किसी को जाके नहीं, भगवान को। तव अस्मि, मैं आपका हूं, ये शुद्ध भक्ति है। और इससे बढ़कर ममत्व, आप भगवान मेरे हैं, तो भगवान ऐसे भक्त की संपत्ति बन जाते हैं। कृष्ण बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ सच अ डिवोटी, कृष्ण बिकम्स अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ सच अ डिवोटी, एंड सच लव इज फाउंड ओनली इन वृंदावन। ऐसा प्रेम केवल वृंदावन में पाया जाता है। क्या प्रश्न है? माइक है दूसरा कोई? Hiranyakashyap was a yogi. योगी नहीं, वो तपस्या करने जाते हैं, वो योगी तो नहीं है। योगी वो होते हैं जो अपना संबंध भगवान से जोड़ना चाहते हैं। वो तो भगवान से अपना संबंध तोड़ना चाहते थे, जोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो योगी नहीं है। परंतु वो तपस्या करने गया, लेकिन तपस्या का उद्देश्य क्या था? मैं इतनी शक्ति प्राप्त करूं, ऐसे वरदान प्राप्त करूं ब्रह्मा से कि मैं सारे ब्रह्मांड के ऊपर राज्य कर सकूं, ये उद्देश्य था। इसलिए उनको हम योगी नहीं कह सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, पीछे माइक। हरे कृष्ण। So don't fail to see the connection.
How can you improve on that?
Remind yourself, you are doing it for Krishna. Why am I doing this? For whom am I doing this? जब हम छोटे छोटे कार्य कर रहे होते हैं तो हम भूल सकते हैं कि ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो उत्तर ये है कि नहीं भूलना, अपने आप को याद दिलाते रहना। और अपने आप को याद दिलाने के लिए हमें बार बार कथा में, प्रवचन में आना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हमारी साधना जैसे जप आदि है, कीर्तन है, वो प्रतिदिन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। फिर वो जो भावना है कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, फिर वो बना रहेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, माइक यहाँ। अच्छा, that problem is not only for Mataji, it is for anyone who is working, right? Not only for Mataji, it is for all people Whether you're working in the office or whether you're working at home, everyone is working, doing something. तो चाहे हम घर में हों, हम बाहर हों, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ तो कर रहा है. तो हम जो भी कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए. ठीक है? सिंपल. सिंपल और डिफिकल्ट? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल. वेरी गुड. यस. भक्तों के संग में आते रहोगे, सिंपल बन जाएगा. ओके. हाँ, और कोई प्रश्न है? हाँ, पीछे. Switch your phone off.
I want to ask devotees outside Vrindavan, can they attain that mantra bhava for Krishna?
Vrindavan ke bahar rehne wale bhakt kya us Vrindavan ke mamatva bhav ko prapt kar sakte hain? Haan, kar sakte hain. Yadi hriday mein wo Vrindavan mein nivas karte hain to. तो वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, केवल एक, इट इज नॉट मेयरली अ ज्योग्राफिकल प्लेस. वृंदावन एक चेतना का स्तर भी है. वृंदावन इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. सो इफ यू आर लिविंग आउटसाइड वृंदावन बट योर माइंड इज अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा, देन यू आर इन वृंदावन एंड देन यू कैन ऑल्सो अटेन दैट स्टेट ऑफ ममत्व. ठीक है? नवद्वीप एक विशेष स्थान. प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भक्त थे नवद्वीप में, तो ये जो ममत्व की भावना है वो क्या उनके साथ में भी था? चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान है या नवद्वीप में, ये बहुत विशेष है. चैतन्य महाप्रभु क्या सिखलाने आए हैं? वो ममत्व का भाव सिखलाने आए हैं कि हमें कैसे उस ममत्व के भाव को प्राप्त करना चाहिए, वृंदावन का भाव कैसे स्वीकार करना चाहिए. वो सारे दुनिया को सिखाने के लिए आए हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नवद्वीप की विशेषता है करुणा, औदार्य, मैग्नानिमिटी, मर्सी, कंपैशन. वृंदावन में सब कुछ मधुर है, स्वीट, वेरी इंटीमेट. नो कंसेप्शन ऑफ कृष्णास गॉडहुड. भगवान की भगवत्ता का विचार नहीं है वृंदावन में, इसलिए सब कुछ बहुत मीठा है, मधुर है. इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहते हैं. सो वृंदावन इज कॉल्ड माधुर्य धाम, द अबोड ऑफ स्वीटनेस. Where there is no conception of Krishna's greatness as God and so on. Vaikuntha, where Lord Narayan resides, is called Aishwarya Dham. Vaikuntha Aishwarya Dham hai kyunki wahan ke bhakt shuddh bhakt hote hue bhi Narayan ko bhagwan mante hain. Aur thodi duri hoti hai, itna nikat nahi hote hain Vaikuntha mein. भक्त भगवान से, वो भगवान का मजाक नहीं उड़ा सकते, भगवान के कंधों पे जाके नहीं बैठ सकते, भगवान को डांट नहीं सकते. वैकुंठ में भगवान भगवान है, केवल दूर से नमस्कार करके उनकी सेवा करने की बात है. वो भी शुद्ध भक्ति है लेकिन ऐश्वर्य भाव. इसलिए वैकुंठ ये ऐश्वर्य धाम कहा जाता है. और नवद्वीप क्या है? औदार्य धाम, औदार्य धाम मतलब उदारता, भगवान की उदारता, मैग्नानिमिटी, कृपा। चैतन्य महाप्रभु सबको सबसे ऊंचा जो भेंट है वो ममत्व की भावना वृंदावन की, उसको देने आए हैं। सो नवद्वीप इज द प्लेस ऑफ मर्सी। ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ किसी का प्रश्न था ना, हम माइक यहाँ दे। यस यस, therefore we should not take it for granted. इसलिए हमें और भी गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, ये समझ के कि हमें जो मिला है बहुत ज़्यादा मिला है, इसलिए बड़े संभाल के रखना चाहिए, बहुत और अच्छी तरह से भक्ति करनी चाहिए। यहाँ किसी का प्रश्न था, माइक वहाँ दे दो। In karma yoga, we do what we want to do, and then by the way we offer the results to Krishna. But in bhakti yoga, we do what Krishna wants us to do. So every action is bhakti. So there is no question of offering the results of the actions to Krishna, because every action that we are doing itself is an offering. The action is the offering, not the result. Whereas in karma yoga, it is the result that is the offered, being offered to Krishna. So in karma yoga, there is not much love. There is sense of duty. Sense of duty, kartavya. But in bhakti yoga, there is bhakti, love. Therefore, we offer to Krishna everything for His pleasure. Okay?
Thank you.
Yes. Yes. प्रश्न ये है कि हम बाहर की दुनिया में नौकरी करते हैं, तो कृष्ण ने आके हमें तो नहीं बोला कि यहाँ नौकरी करना, तो फिर क्या वो कर्म योग होता है या भक्ति योग होता है? वो हमारी चेतना पर निर्भर है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन आर कॉन्शियसनेस। व्हाई आर यू डूइंग द जॉब आउटसाइड, दैट इज द क्वेश्चन। फॉर व्हाट आर यू वर्किंग, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस। Are you working because you want another Mercedes car? Are you working because you want your name in the newspapers? Are you working because you want more, 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 more to enjoy? What is your reason behind working? Yes, when a householder works, he does it as a necessity to maintain the family, because some income is necessary for survival in this world. So therefore he does some economic activity. But he should understand that this economic activity is only limited. It is only meant to keep the body and soul together and to have some basic security so that I will have my daily food to eat and shelter above my head, and then I can do my bhakti very nicely. But if there's anything more than this, then that is not bhakti. So Krishna may not specifically come and tell you that you do this job or you do that job. But if your actions are in accordance with Guru, Sadhu and Shastra, then yes, you can consider your actions as bhakti yoga also. But if your motive is not this, and you have some other motives associated with that, to that degree it will not be bhakti yoga. It will be something else. Okay? Hare Krishna. Answer. Idhar. करेगा क्यों नहीं, लेकिन साथ साथ जो भगवान कहते हैं वो भी हमें करना चाहिए। जैसे हम भगवान के सामने आके प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे मेरे मृत्यु के समय मुझे आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं आपको स्मरण कर सकूं, लेकिन हमारे दिन में हमारे दैनिक कार्य में हम जप नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, प्रवचन में नहीं बैठेंगे, लेकिन इतना ही चाहेंगे कि भगवान मृत्यु के समय हमको आपका स्मरण होना चाहिए, तो वो ठीक नहीं। तो जब मृत्यु के समय उनका स्मरण करना है तो हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि जीते समय भी हर क्षण हमारा कृष्ण स्मरण में जाए। तो हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसे होना चाहिए कि हम कृष्ण को अधिक याद कर सकें। फिर हमारी जो प्रार्थना है भगवान को कि मृत्यु के समय आप हमें आपकी स्मृति दिलाइए, फिर वो मजबूत होगी प्रार्थना। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ा देर हो गया, आप सबको अपने अपने स्थान में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।